विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण तालाबंदी होने से लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। क्या लगता है, क्या स्थिति है?
मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो इस पर चिंता व्यक्त करी है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर मैं उनके शब्दों को रिकॉल करूं अपनी इस बातचीत में, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूरा फोकस इस बात पे डाला है कि घरों के अंदर कैसे शांति हो, और उन्होंने दुनिया भर की सरकारों से आवेदन करा है, उनसे निवेदन करा है कि वो महिला सुरक्षा को अपने पैंडेमिक रिस्पांस के सेंटर में रखें। और ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि आपदा के समय, ना केवल अगर हम अभी कोविड की बात करें, लेकिन आपदा के समय अगर हम पहले की भी कुछ इस तरह की बीमारियों को देखें, इबोला को देखें या हम जीका को देखें, तो उस दौरान इस पर काफी डॉक्यूमेंटेड ग्लोबली अब एविडेंस है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में इस ऐसी आपदाओं के दौरान, या चाहे अगर नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके दौरान भी बढ़ोतरी होती है। अगर अभी की कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करूं, तो जब से कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ है, अगर मैं देखूं तो मार्च और अप्रैल के महीने में ही फ्रांस में घरेलू हिंसा के मामलों में 30% की बढ़ोतरी के आंकड़े आ रहे हैं। अगर साइप्रस और सिंगापुर को देखें, तो वहां पर भी 30-33% की वृद्धि हुई है हेल्पलाइन के पास जो कॉल्स रजिस्टर हो रही हैं उसमें। इसी तरह अर्जेंटीना के इमरजेंसी कॉल्स में घरेलू हिंसा के केसेस में 25% की 20 मार्च तक वृद्धि हुई है। तो कनाडा है, जर्मनी है, स्पेन है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सभी जगहों पर इमरजेंसी शेल्टर फैसिलिटी में घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर के खासकर एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है कि हम लोग घरेलू हिंसा के साथ साथ जो और तमाम अलग तरह की हिंसाएं हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर हो या कार्यस्थल, क्योंकि कई प्रकार के कार्यस्थल अभी भी फंक्शनल हैं जो कि घरों से बाहर हैं, या अब घर भी कार्यस्थल बन गए हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ऑनलाइन डिजिटल वायलेंस का भी होगा, जिसपे आंकड़ों की अभी कमी है, लेकिन जिसपे बात करना बहुत जरूरी है।
भारत में भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने महिलाओं के प्रति हिंसा में बढ़ोतरी की शिकायत की है। क्या कहा गया है इसमें?
मार्च के पहले सप्ते से अगर हम मार्च के आखिरी सप्ताह तक देखें, तो उनमें उनके पास जो कंप्लेंट्स आई हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। मार्च के पहले सप्ताह में हम देख रहे थे कि अगर 116 केसेस थे, तो आखिरी सप्ताह तक 257 केसेस हो गए थे। जो रेप है, बलात्कार है या अटेम्प्टेड रेप है, उनके केसेस में भी इंक्रीज हुई है 2 से 13 केसेस तक की। और खास करके घरेलू हिंसा के मामलों में ये आंकड़ा जो है वो 30 से 69-70 तक पहुंच गया है इस पीरियड के दौरान। तो अभी भारत में भी इस पर बातचीत शुरू हो गई है। ये आंकड़े तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से आए हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है आंकड़ों को लेकर के, वो ये है कि अभी लॉकडाउन के चलते जो सर्विसेज हैं, या वो एसेंशियल सर्विसेज या हेल्पलाइंस हैं या वन स्टॉप सेंटर्स हैं या हेल्थ फैसिलिटीज हैं जहां पर कि सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस अपनी कंप्लेन फाइल कर सकती हैं, वो बहुत इंपैक्टेड हैं। तो अगर हम लोग आंकड़ों का मुद्दा लें, तो मुझे लगता है कि अभी दिस इज रियली लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारे पास आंकड़े हैं ही नहीं। एक और चीज देखने को मिली है कि हेल्पलाइन नंबर्स के द्वारा जो कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं, उनमें एक्चुअली गिरावट आई है। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जब महिलाएं अपने घरों में बंद हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि वो उन फोन नंबर्स पे कॉल ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ना तो उनके पास घर में वो सुरक्षित जगह है। और ये भी हो सकता है कि एक अध्ययन हम लोगों ने करा था काफी समय पहले, जिसमें ये निकल के आया था कि कौन घरों में सेल फोन्स को या फोन्स को ओन करता है। और उसमें ये आंकड़ा स्पष्ट था कि बहुत से परिवारों में ओनरशिप जो है फोन की वो पुरुषों या लड़कों के पास है, और महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो उन तक उतनी पहुंच नहीं है।
इसके अलावा इसके कई आयाम और भी हैं, जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर महिलाओं को तालाबंदी के दौरान आम रास्ते पर फेंक दिए जाने का खतरा है, वहीं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या लगता है समस्या कितनी जटिल है?
समस्या बहुत जटिल है मैं कहूंगी अंशु, क्योंकि और आपने भी पढ़ा होगा कि बीच में अभी अखबारों में इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी, आपने एक मामला पढ़ा होगा झारखंड का जहां एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ क्योंकि क्वारंटाइन के चलते वो अपने घर अपने हॉस्टल से निकल कर जाना चाह रही थी। तो जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वो जो सार्वजनिक स्थल हैं, वो इंक्रीजिंगली डेजर्टेड है, वहां पर लोगों की कमी है, लेकिन जो घर परिवार हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं। अगर मैं आपसे एक सेंसस का आंकड़ा शेयर करूं 2011 का, तो भारत में अभी लगभग 70-71% एक या दो कमरों के घर हैं। तो अगर हम एक बड़ी आबादी को देख रहे हैं जो कि एक या दो कमरों में सीमित होकर रह गई है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे विशेषकर महिलाओं और बच्चियों पर, ये हम समझ सकते हैं। कई तरह के स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एंग्जाइटी है, नौकरी छूटने की एंग्जाइटी है, पैसे की एंग्जाइटी है, बीमारी को लेकर की एंग्जाइटी है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में पितृसत्तात्मकता के चलते ये आम देखने को आया है कि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। एक बड़ी तादाद है महिलाओं की, लेकिन जो कि स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में काम कर रही है, तो हम दोनों तरह की महिलाओं को देख रहे हैं, जो घरों में हैं, लेकिन जो अपने काम के कारण घरों से बाहर जा रही हैं। वैश्विक आंकड़ा देखें तो 70% ग्लोबली हेल्थ वर्कर्स महिलाएं हैं, तो उनकी सुरक्षा और खास करके ऐसे ऐसे समय में जब सार्वजनिक स्थल काफी डिजर्टेड है, तो उनकी सुरक्षा, खासकर उनकी सुरक्षा हिंसा को लेकर के, और वो हिंसा कई तरह की हो सकती है। आपने अभी मामले देखे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के भारत में भी केसेस आए हैं, और इस पे ऑफ कोर्स गाइडलाइंस भी इशू हुई हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर के और जो एक सेक्सुअल वायलेंस से सुरक्षा है उस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ।
ऐसे में जवाबी कार्रवाई, जो कोविड की सारी जवाबी कार्रवाई है उसके केंद्र में लिंग आधारित हिंसा से निपटना बहुत जरूरी हो गया है। क्या किया जा सकता है इस बारे में? क्या कोई ऑनलाइन सर्विसेज दी जा सकती हैं? क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसमें?
जो लिंग आधारित प्लानिंग है वो पूरी कोविड के सेंटर में होनी चाहिए, रादर एस वी से कि एड ऑन ना हो, वो टोटली इंटीग्रेटेड हो। और इस पे भारत में भी जो यूएन एजेंसीज हैं वो मिलकर के इस पे काम कर रही हैं, और इस पे एडवाइजरी भी हम लोगों ने एक वन स्टॉप सेंटर्स को लेकर के खास करके बनाई है। लेकिन अगर हम देखें कि वो क्या कदम हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आंकड़ों को लेकर के ही। दूसरा एक मुद्दा है कि सर्विसेस का, कि जो महिला हिंसा से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, और अगेन इसमें ऑलरेडी भारत में एडवाइजरी इशूड है कि जो इस तरह की सर्विसेज हैं, वन स्टॉप सेंटर्स हैं या हेल्पलाइन हैं, वो खुले रहें और वो काम करते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सोचना और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वन स्टॉप सेंटर हॉस्पिटल बेस्ड है तो ऑब्वियसली वन स्टॉप सेंटर के जो कर्मी हैं उनको भी वो सारी सुरक्षा और सारे उनकी उनकी खुद की रक्षा के जितने भी जो प्रावधान हैं वो मिलना जरूरी है, अन्यथा वो वन स्टॉप सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा ये है कि अगर जो हेल्थ सर्विसेज हैं या जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी ओरिएंटेशन करना इस चीज पर कि वो कैसे जो महिला हिंसा है या जो लैंगिक हिंसा है उसको पहचान पाए, और उनके खुद का क्षमता वर्धन करना इसको पहचानने का और इस पे काम करने का। आई थिंक एक तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई जगह बहुत इनोवेटिव इनोवेटिव तरीके से भी लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक दोज आर काइंड ऑफ इनोवेशंस दैट वी आर सीइंग इमर्जिंग आल्सो इन इंडिया. अंशु की जैसे एक देश में ये भी प्रयास हुआ है कि आप एक कोड वर्ड अपने लोकल फार्मेसी को भेज सकती हैं, या वर्चुअल न्यायिक सिस्टम्स की सॉल्यूशंस भी हम लोग सोच सकते हैं. तो अगर मैं आपको एक एक मुद्दा लूं आपके साथ की, जो पूरा मुद्दा है घरेलू काम को शेयर करने का, एक ये बड़ा कारण है महिलाओं के खिलाफ हिंसा होने का. तो जो शेयर्ड केयर है, क्योंकि घर के कामों की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा महिलाओं के ऊपर है, और इसपे तमाम आंकड़े हैं कि महिलाएं कितना पुरुषों की तुलना में कितने घंटे कम सोती हैं, या वो कितने ज्यादा घंटे घरेलू कामों में अपना समय बिताती हैं. तो एक ये बहुत अच्छा मौका है कि इन मुद्दों पर हम लोग जो सामाजिक नॉर्म्स हैं और जो व्यवहार हैं उनको कैंपेन्स के द्वारा, क्योंकि वो वर्चुअली भी हो सकती हैं, इसलिए ये एक अच्छा मौका है उस पे काम करने का. लेकिन उसके साथ ही मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा महिला हिंसा के संबंध में उठाना चाहूंगी, वो ये है ऑनलाइन वायलेंस का. महिलाएं ऑनलाइन तमाम तरह की हिंसाओं को अनुभव करती हैं, इंक्लूडिंग सेक्सुअल वायलेंस ऑनलाइन. तो एक और वो मुद्दा होगा जिस को गंभीरता से समझना, उस पे आंकड़े इकट्ठा करना, और उसको जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लैंगिक हिंसा को और विशेषकर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को कोविड के पूरे प्लानिंग और रिस्पांस में उसकी रिकवरी के बिल्कुल उसके मध्य में हमें केंद्रित करना होगा.